अब दुआ दी, बेटा आप दोनों खाना खाकर सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना है, अगर अभी सोएंगे नहीं तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। आहाना ने अपने दोनों लाडलों को समझाने की कोशिश की, जिस पर नन्ही अद्दू ने अपने मोटे मोटे गालों को फुलाया और मासूम सी सूरत बनाते हुए उसे देखने लगी। हम पापा का इंतजार कर रहे हैं मम्मा। यस मम्मा, हम पापा का इंतजार कर रहे हैं, आदि ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, और अपने बच्चों की ये जिद देखकर आहाना बेचारी परेशान हो गई। आपके पापा आज देर से आएंगे बच्चे, कब तक आप ऐसे भूखे बैठकर उनका इंतजार करेंगे? आप दोनों खाना खा लीजिए और चलकर सो जाइए, सुबह आपका स्कूल भी है। मम्मा, हमें पापा को बताना है कि कल हम स्कूल में डांस करने वाले हैं, और आपके और राशि बुआ के साथ उन्हें भी आना है हमारा डांस देखने, आदि ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए ऐसे कहा जैसे कितनी इम्पोर्टेंट बात हो। छोटी सी अद्दू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यस मम्मा, कल हम डांस करेंगे, अयान भैया भी डांस करेंगे, चाचू और चाची आएंगे उनका डांस देखने, हम पापा को कहेंगे कि वो भी आएं, वरना वो भूल जाएंगे और नहीं आएंगे। कितने प्यारे लग रहे थे इस वक्त वो दोनों बच्चे, जो अपनी माँ के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा दोनों उनका डांस देखने आएं। आहाना पल भर अपने बच्चों का चेहरा देखती रही, फिर प्यार से उनके गाल को छूते हुए बोली, आपके पापा नहीं भूलेंगे बेटा, हम उन्हें याद दिला देंगे, और कल मम्मी पापा दोनों आएंगे आपका डांस देखने। आपके पापा बहुत देर से आएंगे, अगर आप दोनों जागकर उनका इंतज़ार करेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं लोगी, वक्त पर सोएंगे नहीं तो सुबह उठ नहीं पाएंगे, फिर कैसे स्कूल जाएंगे, और अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो डांस परफॉर्मेंस में पार्ट कैसे लेंगे? इसलिए मम्मा की बात मानिए, आप दोनों खाना खा लीजिए और सो जाइए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पापा को आपकी परफॉर्मेंस के बारे में याद दिला देंगे, और उनके साथ ही स्कूल आएंगे, साथ में आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। आहाना के इतने प्यार से समझाने पर अद्दू और आदि ने अपना छोटा सा सर घुमाकर एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सलाह लेने के बाद वो आहाना की बात मान गए। राशि उनका खाना ले आई, अन्नू ने दोनों को खाना खिलाकर ले जाकर सुला दिया, राशि को भी खाने को कह दिया, और खुद दोनों बच्चों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बीते वक्त में कहीं खो गईं। इस फ्लैट में आए उन्हें 6 साल होने वाले थे। एक वो दिन था जब उसने 2.5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ इस फ्लैट में कदम रखा था, और अब वो दोनों बच्चे 5 साल के हो गए थे। ये 5 साल बहुत उतार चढ़ाव और मुश्किलें लेकर आए थे। अच्छा बुरा हर तरह का वक्त आया था, पर जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। इस फ्लैट में उसने अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली थी, जिसे वो संभालती थी। राशि, जो तब उसके लिए अनजान थी, आज इस छोटे से परिवार की एक अहम सदस्य थी। उसकी जिंदगी और दिल में फलक और अंतरा जितनी ही अहमियत रखती थी। आसान नहीं रहा ये सफर उसके लिए, जिंदगी ने खुशी के साथ गम भी दिया था उन्हें। दादा दादी जैसे अक्षय के बच्चे देखने के लिए ही जिंदा थे। यहाँ दोनों बच्चों ने दुनिया में कदम रखा, और 6 महीने के अंदर अंदर दादा दादी दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस गम से उभरना आसान नहीं था उनके लिए, पर वक्त के साथ सब संभलने लगे। मुश्किल था उस गम से उभरना, दो दो बच्चों को एक साथ संभालना, उनके साथ अपने करियर और घर के काम को मैनेज करना। शुरू के 1 साल तो जयंती जी उसके पास ही रहीं, जिससे उसे काफ़ी मदद मिल गई। उसके बाद वहाँ पल्लवी के लिए दक्ष को संभालना, स्कूल जाना और घर को देखना मुश्किल होने लगा। उस पर जयेश जी की तबीयत भी खराब हो गई, दक्ष भी बीमार पड़ गया, तो जयंती जी कानपुर चली गईं। उसके बाद आहाना के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ गईं। राशि का बहुत साथ मिला उसे, और उसने बहुत मदद की उसकी, घर संभालने के साथ बच्चों का ध्यान रखना, सब में उसने आहाना की मदद की। अन्नू ने बच्चों के 3 साल होने तक स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, घर पर अपने बच्चों के साथ रहती, उनका ख्याल रखती, उनके वात्सल्य का आनंद उठाती, उनके बचपन को जीती, उनके साथ खूबसूरत यादें बनाती, अपनी ममता भरे आंचल की छांव में उनका भरण पोषण और परवरिश करती। उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उसने वापस स्कूल ज्वाइन कर लिया, बच्चों को भी पास के प्ले स्कूल में डाल दिया था, ताकि घर से दूर रहकर उठना बैठना, अनजान बच्चों के साथ खुलना मिलना सीखें, वरना आगे स्कूल में दिक्कत होती। सुबह उन्हें खुद से नाश्ता करवाकर जाते हुए उन्हें स्कूल छोड़कर जाती, राशि जाकर उन्हें ले आती, और जब दोपहर में वो लौटती तो दोनों बच्चे आकर उससे लिपट जाते। उसके बाद सारा वक्त वो अपने बच्चों को देती थी, जब वो थोड़े और बड़े हुए तो स्कूल में डाल दिया। अगर इन सालों में आहाना ने एक माँ का फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया तो अक्षय भी एक बेहतर पिता साबित हुआ था। उसका प्रोफेशन ऐसा था कि ज्यादा वक्त नहीं मिलता, पर जितना वक्त मिलता उसे अपने बच्चों और परिवार पर न्योछावर करता था। दोनों बच्चों को अपने पलकों पर बिठाकर रखता था, आहाना के साथ मिलकर उनका ख्याल रखता, जितना मुमकिन होता बच्चों की परवरिश में अपना योगदान देता, बच्चों के साथ आहाना का भी पूरा ख्याल रखता। जैसे आहाना एक माँ के साथ पत्नी का फर्ज बखूबी निभा रही थी, बच्चों के साथ अक्षय की जरूरतों का भी ध्यान रखती थी, वैसे ही अक्षय भी एक बेहतर पति के साथ बेहतरीन पिता साबित हुआ था, जिसे अपने बच्चों के साथ अपनी बीवी से भी प्यार था और तीनों का बराबर ही ख्याल रखता था। सुबह निकलने से पहले अन्नू के साथ कुछ खास पल बिताता, अपने बच्चों संग खूबसूरत यादें बनाता। कितना ही थका हारा क्यों ना लौटे, अपने बच्चों से बातें करना, उनके साथ खेलना नहीं भूलता था। और उसके दोनों बच्चे उसके एनर्जी बूस्टर थे, जिन्हें देखते ही वो अपनी सारी थकान भूल जाता और आते ही साथ अपने बच्चों के पास पहुंच जाता। जिस दिन रात को नहीं आ पाता, वीडियो कॉल पर अपने बच्चों से बात करता। छुट्टी का सारा दिन वो अपने बीवी बच्चे संग बिताता था, उन्हें घुमाने भी लेकर जाता था। आहाना ने जब दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो अक्षय ने उसे कार गिफ्ट की थी, ताकि उसे जाने आने में कोई परेशानी ना हो। अपने छोटे से परिवार के संग वो बहुत खुश था, पर अपने उस परिवार को भी नहीं भुला था जिनसे वो मजबूरी में दूर हो गया था। फलक अन्वय अपने परिवार संग यहाँ आते रहते थे, बच्चों के बीच गहरा रिश्ता था और वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। अक्षय पति पिता के साथ बेटे का फर्ज निभाने से भी चूकता नहीं था, पर उसने दोबारा उस घर में कदम नहीं रखा था और 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था उसने रूपाली जी को देखा तक नहीं था। दादा दादी के अंतिम संस्कार के वक्त ही उसने उन्हें लास्ट देखा था। इन सालों में न रूपाली जी ने माफी मांगी और न अक्षय ने पलट कर उस ओर देखा, पर इन दूरियों का असर बाकी के रिश्तों पर नहीं हुआ था। अक्षय और आहाना का रिश्ता पहले से बेहतर हो चुका था और पति पत्नी से माता पिता बनने के बाद और मजबूत हो गया था। अच्छी बुरी सब यादें समेटे ये बीते 5 साल अक्षय और आहाना दोनों ने सुकून से बिताए थे। बीते सालों की खट्टी मीठी यादों में खोई आहाना वर्तमान में तब लौटी जब उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज पड़ी और अनायास ही निगाहें उस दिशा में घूम गईं। अक्षय जो फ्लैट की एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था, उसने ठीक उसी वक्त दरवाजा खोलते हुए कमरे में कदम रखा और नजरें सीधे सामने लगे बेड पर पड़ी। दोनों की निगाहें टकराई और एक के चेहरे पर हैरत तो दूसरे के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभरे थे। आप अब तक जाग रही हैं, ये वक्त है आपके घर आने का, दोनों के लब हिले और एक साथ ही एक दूसरे से सवाल कर लिया। इशारा दोनों का वक्त की ओर था, घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अक्षय आहाना को इतनी देर तक जागते देखकर हैरान था, तो वहीं आहाना उस पर नाराज। एक दूसरे का सवाल सुनकर दोनों के चेहरे के भाव बदल गए थे। कहा तो था मैंने आपको कि आने में देर हो जाएगी, अक्षय ने आहाना की नाराजगी भांपते हुए अपने बचाव में सफाई पेश की, जिसे सुनकर आहाना खींच उठी और तुनकते हुए बोली, देर होगी कहा था, ये नहीं बताया था कि आधी रात के बाद लौटेंगे।